ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम शोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम से पाठ अष्टम स्कंध अध्याय 6 देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा। इस अध्याय के आज श्लोक संख्या 20। अरयो अपि संधेया सती कार्यार्थ गौरवे अहि मुषिकवत् देवा हि अर्थस्य पदविंगतये। शब्दार्थ अरयः शत्रुगण अपि यद्यपि ही निसंदेह संधेया संधि के योग्य सती ऐसा होकर कार्यार्थ गौरवे महत्वपूर्ण कर्तव्य के मामले में अहि सर्प मुषिका चूहा बत सदृश देवा हे देवताओं ही निसंदेह अर्थस्य हित का पदवीं पद गतई ऐसा होकर अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हे देवताओं, अपना हित साधना इतना महत्वपूर्ण होता है कि मनुष्य को अपने शत्रुओं से संधि भी करनी पड़ सकती है। अपने हित व लाभ के लिए मनुष्य को सर्प तथा चूहे के तर्क के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोहराइए, हे देवताओं, अपना हित साधना इतना महत्वपूर्ण होता है कि मनुष्य को अपने शत्रुओं से संधि भी करनी पड़ सकती है। अपने हित लाभ के लिए मनुष्य को सर्प तथा चूहे के तर्क के अनुसार कार्य करना चाहिए। तात्पर्य, एक बार एक सांप तथा एक चूहा एक पिटारी में पकड़ लिए गए। क्योंकि चूहा सर्प का भोजन है, अतः सर्प के लिए यह सुनहरा अवसर था। किंतु क्योंकि दोनों ही पिटारी में बंद थे, अतः यदि सर्प चूहे को खाता भी तो वह बाहर निकलने में असमर्थ रहता। इसलिए सर्प ने चूहे से संधि करना बुद्धिमानी समझा और उसने चूहे से पिटारी में छेद करने के लिए कहा, जिससे वे दोनों बाहर आ सके। सर्प की योजना थी कि जब चूहा छेद बना लेगा तो सर्प चूहे को खाकर छेद से होकर पिटारी से निकल जाएगा। यही सर्प तथा चूहे का तर्क कहलाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदा सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महापदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरदिशे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे अरयोपि संधेया सती कार्यार्थ गौरवे अहि मुषिकवत् देवा हि अर्थस्य पदविंगतये हे देवताओं अपना हित साधना इतना महत्वपूर्ण होता है कि मनुष्य को अपने शत्रुओं से संधि भी करनी पड़ सकती है। अपने हित व लाभ के लिए मनुष्य को सर्प तथा चूहे के तर्क के अनुसार कार्य करना चाहिए। प्रभुपाद ने तात्पर्य में क्लियर किया कि चूहे और सांप का तर्क क्या है। तो भगवान ने कह रहे कि देवताओं को चूहे और सांप के सर्प के तर्क को यहाँ पर उपयोग करना चाहिए। क्या एक पेटारी के अंदर कौन पकड़ा गए थे? सांप और चूहे एक साथ। तो सांप तुरंत ही खा सकता था किसको? चूहे को। लेकिन खाया नहीं, थोड़ा बुद्धि खर्चा किया, बोले कि खा लूंगा तो अभी इसका अंदर निकालने का तो कोई रास्ता ही नहीं, फिर यहीं तो फंस जाऊंगा है। तो इसलिए उन्होंने पहले उपयोग किया किसको? चूहे को। कहा कि उसका साथ संधि किया, उसकी मित्रता किया, बोला थोड़ा सा यहाँ तुम होल बनाओ, तुमको होल बनाना आता है, तुम होल बनाओगे तो दोनों निकल जाएंगे। तो होल लगा, होल बनाने में लगा दिया किसको? चूहा। जब होल बना दिया सांप बोले खाया किसको? चूहा को खा के इसके अंदर से होल से बाहर निकल गए हैं। तो ये बुद्धिमानी का काम है। लेकिन ये उपदेश भगवान ने किसको कह रहे? देवताओं को कहे। कभी राक्षस रूप से उपदेश नहीं दिए हैं, ऐसा उपदेश कभी भी भगवान ने किसको नहीं दिए? राक्षस रूप को भी नहीं दिए। ये उपदेश किसको दे रहे? देवताओं को दे रहे। क्यों? देवताओं की जो लक्ष्य है, आप सब देवता है कि राक्षस है? देवता है कि राक्षस? दो प्रकार के भगवान गीता में कहते, दो प्रकार की संसार में होते हैं, दैव आसुर यही बच्चे है, देवता और आसुरी। तो आप लोग क्या है? देवता है कि असुर है? भगवान ये उपदेश किसको दे रहे हैं? देवताओं को दे रहे हैं, राक्षसों को नहीं। आप लोग क्या देवता है कि राक्षस है? देवता है, सब दिव्य गुण के अधिकारी हैं, क्योंकि आप भगवान विष्णु की शरण में हैं। जो भगवान विष्णु की शरण में रहते हैं उनको देवता कहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण ने कभी भगवान विष्णु व श्री कृष्ण की शरण में कभी भी नहीं जाते, उनको क्या कहते हैं? उनको दैत्य कहते, राक्षस कहते हैं। तो पांडव और कौरव में कौन भगवान ने पांडवों को कहा? अर्जुन कहे कि तुम पांडव लोग दैवी हैं, दैवी संपन्न गुण में के साथ ही जन्म लिए हो, तुम लोग दैवी गुण। और वो लोग कौन सा गुण में थे? दुर्योधन आदि हैं, ये सब राक्षसी गुण में थे। इसलिए भगवान ने कभी कभी भक्तों की रक्षा करने के लिए कपटता की ऐसे ही छल बा ऐसे ही उपयोग करते हैं। लेकिन यदि कोई अभक्त ऐसे ही कपटता का उपयोग करेगा वो स्वयं ठग जाएगा, है ना। शकुन ने क्या किया? कहा कि कपट पासा खेलेंगे। किसके साथ? पांडव के साथ। क्या उद्देश्य था उसका? वो भी यही सोच रहा थे, वो लोग भी प्लान बनाया कि इनके साथ कपट पासा खेलेंगे तो उनको तो ठीक से खेलना नहीं आता, किनको? पांडवों को। और सब हार जाएंगे, पहले मित्रता करके उनके साथ खेलेंगे, खेलने के लिए उनको बुलाएंगे, खेलेंगे और खेल के सब उनका राज्य छीन लेंगे। तो अंत में क्या फल हुआ? यदि भक्तों के साथ में कोई कपटता करता है तो उसका अंत में नाश हो जाता है। तो इसलिए वो शकुन ने अपने कपटता को उपयोग किया मैंने पांडवों के प्रति, पांडवों के ऊपर कपट करके उनको कपट पासा खेलने के लिए बुलाया। और उसके पास में क्या था? ये विशेष कोई अस्थि में बनाया था अपना कपट पासा, जो खेलने वाला जो ड्रा करने के लिए, मेरे पता नहीं कैसे खेलते हैं, लेकिन शकुन के पास में एक विशेष क्या था? पसा था, वो पिताजी के हड्डी से बनाए थे। वो जो खेलेगा उसके साथ सब समय उसका जीत होगा, तो वो जानता था। इसीलिए पांडवों को कपटता रख के ही, कपट करके ही पांडव को बुलाया, आओ खेलेंगे। क्या खेलेंगे? कपट पासा है, पासा खेलेंगे। तो खेल के उनके सब छीन लेता है। लेकिन यदि इसी कपट को कभी भक्तों के प्रति प्रयोग करता है तो उसका वो कार्य नहीं करता है, चाहे थोड़ा सा फल देता है, लेकिन अंत में वो स्वयं जो कपट का आचरण करने वाला स्वयं का विनाश हो जाता है। यदि ऐसा ही सर्प मुषिक न्याय, आप अपने मुषिक इस न्याय को यदि उपयोग करेगा किसके? साधु के प्रति। क्या होगा? रूपा जी ने कहानी कहते हैं, साधु के पास में चूहा ने भयभीत होकर आया साधु का चरण में। साधु ने तो दयालु बोला, क्या हुआ, क्या क्यों इतने देर इतने क्यों डर गए? तो कहे, देखो बीड़ी मुझे खाते खाने आता है, मुझे रक्षा करो। तो क्या कर सकता हूँ मैं? मुझे बिल्ली बना दो। साधु बोला, ठीक है बिल्ली बन जाओ। फिर बिल्ली बनने के बाद फिर जा रहा था, कुत्ता देखा, कुत्ता फिर इसको छपने के लिए आया, तो फिर क्या क्या हुआ? नहीं मुझे फिर कुत्ता खाने आ रहा, कुत्ता मुझे काट रहा है, मुझे प्रॉब्लम कर रहा। तो क्या करना तुझे? मुझे कुत्ता बना। ठीक है कुत्ता बन। कुत्ता बन जाने के बाद फिर जा रहा था तो क्या देखा? शेर देखा। शेर देखा फिर डर के भागा, बोले क्या हो रहा है तू? बार बार भाग के आज मेरे डिस्टर्ब करता है, मैं भजन कर रहा हूँ, क्या चाहिए तुझे? नहीं कुत्ता, मैंने शेर आ गया मुझे, तो क्या चाहता तू? ठीक है जल्द शेर बन जाए, मुझे शेर बना दो। साधु का ठीक है शेर बन गया। शेर बन गया तो सामने बैठ के क्या करने लगा? बोला क्या ये क्या है? मेरे को तो मेरे तरफ देख के रह सके, ऐसा जीप को ऐसा निकाल रहा क्यों? क्या प्लान है तुरा? मुझे खाएगा ना क्या? हम भी खाने का, आप तो मेरे खाने के समय। बस साधु ने क्या बोला? पुनर्मुषिक भव। तो इसलिए ये इस कपटा का, ये जो भगवान ने देवताओं को सिखाया, तो इसको आप गुरु के ऊपर उपयोग नहीं करना। बार कोई गुरु के पास में कपटता नहीं करना चाहिए, ये संत के पास में, साधु के पास में कपटता नहीं करना चाहिए। यदि ये कपट के नियम को साधु व गुरु के पास में उपयोग करोगे फिर आपका हालत क्या होगा? पुनर्मुषिक भव। फिर आप जिस स्थिति में उसी स्थिति में फिर आ जाओगे। बाकौरों की तरफ आने एक दुर्योधन आदि जैसे उपयोग किया था कपट, किसके प्रति? पांडवों के प्रति। और सभी क्या हैं, नाश हो गया। इसलिए ये जो कपटता के नियम है भगवान ने देवताओं को सिखाते हैं, जिन्होंने भगवान के विष्णु के भक्त हैं, जिनकी चिंतन जगत की कल्याण करना है, हैं? तो लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति के लिए कपटता आचरण करेगा तो संतों के प्रति उसकी हानि होता है, हैं? इनके लिए नहीं कहा गया। वो रामानुज आचार्य के संप्रदाय में, निश्चित संप्रदाय में देखते एक उनके आलवर थे, हैं? क्या नाम उनका, तेर मंगुर ऐसे कुछ था ना, एक आलवर थे जो उन्होंने तिरुमंगल जी राम थे तिरुमंगल, तो उन्होंने क्या किए, सो डकायत को ग्रुप करके, डकायत बना उसको ग्रुप बना के रखे, डकायत को आश्रय दिया, सो लाके उनसे डकायत को उपयोग किया, किसकी सेवा में, भगवान की सेवा में, हैं? क्योंकि इनको रंगनाथ जी के विशाल मंदिर बनाना था, और धन कहाँ से लाएंगे, ये जो मांग के राजा लोग शक्त थे, अशोक का बा शिव जी शैव थे, वो दे विष्णु मंदिर बनाने की कोई धन नहीं दिया, मना कर दे, तो इन्होंने क्या किया, सो डकायत उनको आश्रय दिया, उनको बुलाकर उनको सब बुलाया, डकायत करो, हैं? सब चोरी करके धन ला कर दिए सब, और उनको बहुत अच्छा प्रशंसा, सब बहुत अच्छे काम कर रहे हो ऐसे करके उनको पकड़ रखे हैं, तो धन सब चोरी करते थे, लेकिन वो स्वयं वो धन के एक मा पैसा भी अपने भोजन के लिए व अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग नहीं कर सकते थे, स्वयं वो माधु करी करके खाते थे, मांग कर, साधु की जैसे वृत्ति, वो सारे दिन रात भोजन करते थे, मांग कर खाते थे, लेकिन जो चोरी का धन था उसको किस में लगाते थे, हैं? ये सारे धन को इकट्ठी करके ही, पर इतनी विशाल मंदिर रंगनाथ जी के बनाए, जो आज भी हम हजार घर के लोग जाते हैं उसके लाभ उठाते हैं, लेकिन अंत में जब मंदिर बन गया, फिर ये जो उत्पात करने लगे कौन, डकैत लोग ने जो सब पैसा इकट्ठी करा, तो फिर बहुत कुछ उनका डिमांड हुआ, बहुत कुछ क्वेश्चन पूछने लगे किनको, फिर उन्होंने कहे कि उनके चार शिष्य विशेष विशेष चार प्रसिद्ध शिष्य थे, उनको भी उन्होंने शिष्य बना के रखे थे, एक किसी बार लोग किसी के साथ में बातचीत करके ही तो पूरा मोहित करने का कला जानता था, उसको पूरा मोहित कर देते थे, दूसरा बस में अपना बस में ले आता था, दूसरा घर में कैसा सिंधु करना वो जानता था, सिंधु बना कैसे रास्ता बनाना घर के अंदर जाने के लिए, लुटने के लिए रास्ता बनाना, और एक पानी के ऊपर चलना के जानता था पानी के ऊपर, तीसरा और चौथा परछाई पकड़ लेता, सब उसके ऊपर खड़ा हो जाए बस गया वो, तो ऐसा ही चारों शिष्य थे, देखिए कि डॉक्टर ये सारे उत्पाद इनके पैसे में धन, तो अभी तो मंदिर बन गया लेकिन ये लोग ने बहुत कुछ, ये भी सब कई प्रकार की तंग करने लगे, फिर उत्पाद करने लगे, राक्षस की बुद्धि शुरू हो गया, तो फिर उन्होंने कहे कि ठीक है, पानी में चलने वाला जो था शिष्य को बोले कि हम सब ले जाओ, कहाँ कावेरी, पूरा कावेरी नदी में बाढ़ आया था, भरपूर था कावेरी जल, बहुत अगाध जल था उसमें, तो उनको ले गए सब, पहले सब नोट बोट में लेके, बोले कि कुछ लोग देखा करके आगरा दूसरे पार में जाएंगे और बहुत कुछ उनको मिलेगा, ऐसा कुछ लोग दिखाई लगे नदी के बीच में, फिर क्या किया, पानी के चलने वाला जो शिष्य तो टहरना आता था, नीचे से खोल दिया जो होल था, खोल दिया, पानी भर गया लोग में, सब डूब गए वही हैं, लेकिन पानी में चलना जानते हैं, पानी के ऊपर चल के आ गए गुरु जी के पास, लेकिन वहाँ पर तेंग मंगुर जोशा जो संत थे उन्होंने खड़ा होकर लेकिन उनकी हित प्रार्थना किया, कि मैं इतनी पैसा, बदमाश तो लोग है लेकिन काम से अपने बदमाशी को तो लगाया किसके सेवा में, कृष्ण की सेवा में, तो उनको कृष्ण की सेवा में लगा दिया, उनको उपयोग कराए धन को इकट्ठे करने के लिए, और उसी धन में उन्हें मंदिर बनाया, लेकिन खड़ा होकर किनारे पर है भगवान को रो रो आंख से अश्रु बहाते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु हैं, इनको कृपा करके आपके धाम में स्थान दीजिए, क्योंकि आपके मंदिर निर्माण में इन्होंने मुझे सहायता किया, इतनी बड़ी सेवा किया, और कावेरी में डूबकी मरे तो हैं, सुसाइड तो नहीं किए, डूब के डूबकी मरे, कावेरी जल में डूबकी मरने से पहुंच गए कहाँ, वैकुंठ। तो साधु कभी कभी साधु जो कुछ कार्य करते हैं, कोई कपटता भी आचरण करते हैं, वो किसके लिए करते हैं, लोगों की हित के लिए, उनका सब कार्य केवल दूसरों के मंगल के लिए होता है, किसके अमंगल करने के लिए कपटता नहीं करते हैं, कपटता कभी कभी करते तो दूसरे की मंगल के लिए, हित के लिए, इसीलिए साधुओं को कभी कभी ऐसे मैंने भगवान ने देवताओं को प्रवर्त रहा है कि कैसे कपटता है, ऐसे ही सर्प और सर्प मुसी का न्याय को अपना है। भगवान ने कभी किसी राक्षस को नहीं कहते ऐसे कपटता करने के लिए। तो कभी कभी हम सोचते कि जो जो असत धन है, असत तो पैसा कमाए वहां धन, उसको प्रभुपाद ने भी यही नहीं थी, कृष्ण बलराम मंदिर को बनाने के में थोड़ा सा उपयोग किया। प्रभुपाद के पास धन नहीं था मंदिर बनाने के लिए, कृष्ण बलराम के मंदिर वृंदावन में। तो दो व्यक्ति आके कहे गुरु कृपा स्वामी और जसोदानंद स्वामी, कहे कि प्रभुपाद हमारे पास तो धन है लेकिन ये सब किसका मनी है? स्मगलिंग मनी है। स्मगलिंग करके पहले भक्ति में जब नहीं आए थे स्मगलिंग करते थे, बहुत पैसा उसी में हमको मिला था, तो वो स्मगलिंग का मनी आपको दे सकते हैं। प्रभुपाद के बड़े 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 अंक करेंगे, बोले ब्लैक मनी और व्हाइट मनी एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण, लेके आओ जल्दी लाओ, तेरे भगवान के लिए मंदिर बनाए हैं उसमें। लेकिन हम यदि इसको इमिटेशन करेंगे, प्रभुपाद जी ने उनसे धन ले लिया स्मगलिंग का मनी, लेकिन क्या बनाया? भगवान के लिए मंदिर बनाया। तो हम यदि उस स्मगलिंग किसे ऐसे औसत पैसे धन लेकर हमारी इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे तो क्या होगा? भक्ति से संपूर्ण रूप में नीचे जाएंगे। विषय और न खाइले मलिन है मन, मलिन मन हईले नहे कृष्ण स्मरण। यदि हम यदि से सोचेंगे हम भी ले सकते नहीं, हम लेके प्रभुपाद जी की तरफ, हमारे पास में शरणागति नहीं है भगवान के चरण में। प्रभुपाद जी जो कुछ करते थे किसके लिए करते थे? भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। उन्होंने कोई भी एक कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जिसमें माध्यम से अपने इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो, ऐसा नहीं किया। सब कुछ का सभी कार्य केवल कृष्ण की सेवा के लिए लगाए। तो इसलिए कपटता आचरण कभी कभी भक्त कर सकता है केवल भगवान की सेवा के लिए, नहीं तो ये रेगुलर फीचर नहीं है डिवोटी का। रेगुलर सब समय कपटता करना और किसकी किसको लूटना की भावना रखना ये नहीं है। कभी कभी विशेष स्थिति में, हमेशा के लिए नहीं। फिर हम यदि योग्य है कि हम जो कुछ करने केवल भगवान की प्रसन्नता करने के लिए कर रहे हैं, इसी के लिए है, तो फिर हम ऐसा ही कर कभी कभी किसी प्रकार के। लेकिन हमें ठगने की प्रवृत्ति नहीं रखना, कि बद्धजीव का एक लक्षण है क्या? ठगना। कोई मुक्त जीव जब किसको चीटिंग करता है वहां ठग, वो ये बदगुण उसके पास नहीं होता है ठगने का प्रवृत्ति। ठगने का प्रवृत्ति और चीटिंग प्रोपेंसिटी, कमिट मिस्टेक, त्रुटि करना, माया के द्वारा मोहित होना, अपूर्णा इंद्रियां, ये सब बद्धजीव के पास में दिखाई पड़ता है। लेकिन किसी मुक्त आत्मा के पास में ये गुण दिखाई नहीं पड़ते हैं, ये सब नहीं होता, ये गुण उनके पास नहीं होता। लेकिन कभी कभी यदि भगवान की सेवा के लिए ऐसे उपयोग करते हैं, काल जैसे हम सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास का भी कह रहे थे कथा, जैसे कभी कभी ऐसे ही यदि कोई महान संत बाह्य दिखाई पड़ता है कि ऐसे ही कर रहा है, वो प्रकृति में उसका पार्पोज कुछ अलग है, वैसा नहीं करता अपना इंद्र तृप्ति के लिए। हम करना और वो करने में बहुत अंतर है। उनके सभी कार्य केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है, हमारे जो कार्य हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है। इसलिए हम इसको यही नहीं समझ रहे कि भगवान ने ऐसे कैसे उपदेश दे दिया देवताओं को, सर्प और चूहा का नीति अपनाना, वह कथा को दृष्टांत दिए कि सांप जैसे चूहा को खा के फिर पेटारी से निकल गया, चूहा को उपयोग किया उसमें होल बनाने में, और होल बना दिया तो उसको खा के फिर बाहर निकल गया है। तो हम लोग कभी कभी ऐसे ही करते हैं, सब समय नहीं, कभी कभी उपयोग कर सकते हैं। हमारा पूना का जो मंदिर है, कैंप में मंदिर है, कैंप में मंदिर है, तो मुझे है जानते हैं, वो किसी व्यक्ति का था जमीन, तो वो कोई जाकर उसमें साधु बोला पहले कि थोड़ा मेरे को भजन करने के लिए इसमें थोड़ा एक कमरा दे दो, कृष्णा महाराज लगते बस, तो दे दिया मंदिर। तो बोला ठीक है, साधु मेरा बेकार पड़ा हुआ भजन कर लिया, भजन करने लगे, आस्ते आस्ते उसमें लाकर विग्रह रख दिए। साधु रहेगा तो विग्रह रहेगा ना, भगवान रहेंगे साधु एकला कैसे रहेगा है? अब विग्रह रख दिए, राधा कुंज बिहारी। अब विग्रह करते करते, भजन करते करते फिर बाद में कई साल चला गया, साधु ने सोचा कि अरे ये तो अच्छा जगह है भगवान की सेवा के लिए, यहाँ भगवान की एक मंदिर होना चाहिए है? और हजारों लोग आएंगे तो इसे लाभ उठाएंगे, भगवान की भक्ति करके लाभ उठाएंगे। और वो व्यक्ति क्या करेगा, बेकार में लैंड यहाँ जमीन पड़ा है और वो इसको बेचना चाहेगा, कोई आके इधर क्या खोल देगा, होटल खोल देगा या कोई ब्रथेल खोल देगा, तो लिक्वर शॉप खोल देगा, तो उसमें क्या कल्याण होगा संसार की है? तो इसलिए सोचा कि जागा को इसको तो जरूरत नहीं, जिस व्यक्ति का है उसको जरूरत नहीं है, वो तो कहाँ गया, वो तो मर गया, उसका लड़के ही फ्रांस में रहते, ये तो क्या करना है, ये जमीन को हम भगवान की सेवा में लगाना चाहिए है। निर्बंध है कृष्ण संबंध है, सब कृष्ण की सेवा में लगाना। तो इसलिए बोले जो कहा कि अभी छोड़ दो, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, बोले हम अभी छोड़ेंगे नहीं है? तो ऐसा सही है कि गलत है, कारपोज किया देखना चाहिए ना, किसी लिए हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये सारे संपत्ति किसका है, ईसा भाष्य सब कृष्ण का है, इस संसार में सब कुछ कृष्ण का है, और सब कुछ किसकी सेवा में लगना चाहिए, कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। जिसके सिद्धांत ऐसे हैं, जो लक्ष्य ऐसे ही है, तो ऐसे भगवान की सेवा में सब कुछ उपयोग करना, तो फिर उसकी जो कुछ कभी कपटता करता हुआ कुछ इसमें से कोई दोष नहीं लगता है। पद्म पत्र मीवांबसा ब्रह्म अध्याय कर्मणीय संग त्यक् करती जहाँ, उसके पाप नहीं लगेगा। किस किसके लिए कर रहा है, सब कुछ भगवान के लिए। अभी देखो इस मंदिर से मंदिर बना और उसमें से कितने अच्छे भक्त बने हैं, और बीस ना बड़ा मंदिर बना, लेकिन जितने सारे अच्छे अच्छे भक्त कहाँ से बने, कुंज बिहारी वही मंदिर में है, इतने सारे भक्त बने और आज भी बन रहे हैं, आज भी वहाँ पर हजारों लोग आते डेली दर्शन करने, नाचते गाते हैं। तो यदि ऐसा ही यदि हम कभी कुछ कपटता कर लिए तो फिर हैं इसमें दोष नहीं है। गोल देखना चाहिए क्या है, लक्ष्य क्या है, हम क्या चाहते हैं, लक्ष्य क्या है, हैं? लेकिन ऐसा व्यक्ति जो इसको ले ला के ठीक से रख सकते, मैंने यदि शुद्ध भक्त है तो भगवान इसको सहायता करते हैं। और आप शुद्ध भक्त नहीं हो, आपके थोड़ा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है और थोड़ा सा भी सेवा की इच्छा है, पर फंस जाओगे हैं, आप इमिटेशन नहीं कर सकते किनको, महाभागवत वैष्णव को। इसलिए हम सतर्क रहना चाहिए, लेकिन सब सब समय जानना चाहिए कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य, भगवान को प्रसन्न करना, कृष्ण को सदा स्मरण रखना, कृष्ण को प्रसन्न करना, ये हमारा प्रत्येक एक्टिविटी प्रत्येक कार्यकलाप के माध्यम से ये लक्ष्य होना चाहिए है? नहीं तो तथा कथित कुछ लोग होते बड़े सदाचारी होते हैं, अहिंसक होते हैं, बड़े मीठे बोलते हैं, ब्राह्मण के सभी गुण को रखते हैं, ब्रह्मचर्य की जैसे वो नवदीप का ब्रह्मचर्य जैसे था, क्या खाता था हैं, क्या खाता था, दूध पीता था, केला। अभी कुंभ मेला में कितने बाबा आते हैं है? कितने दुधारी बाबा, फलाहारी बाबा, जलाहारी बाबा है, कितने बाबा सो है, ध्यान मौनी बाबा, मौनी बाबा है, ध्यानी बाबा, कितने बाबा आते हैं है? सब बाबा से पहले दर्शन करते, लेकिन ये सब बाबा है क्या नहीं करते, असली चीज नहीं करते, क्या भक्ति नहीं करते है। हमारे जो असली लक्ष्य क्या है, भगवान की भक्ति करना। नवदीप ब्रह्मचर्य इसलिए सदाचार था, सारे सद्गुण के अधिकारी होते हुए भी यदि भगवान की भक्ति नहीं किया, उसका सारा सद्गुण बेकार जाता है। भगवान इसलिए कहते कि अपि चेत्सु दुराचार भजते माम अनन्यवाद साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित ही सह। वो ठीक स्थिति पर है क्योंकि साधु है मेरे शरणागत है। 26 गुण जो वैष्णव का है उसमें से स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या है, भक्त का स्वरूप लक्षण क्या है, 26 गुण में स्वरूप लक्षण कौन सा है, कृष्ण के शरण, और सारे वो तटस्थ लक्षण। वो स्वरूप लक्षण को यदि अपनाएगा, अन्य लक्षण अपने अपने आस्ते 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 उसके चरित्र में दिखाई देंगे। कृष्ण का शरणम, यदि व्यक्ति संपूर्ण रूप में कृष्ण के चरण में शरणागत है, तो फिर भगवान कहते कि क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वती निगच्छन्ति कौन्तेय प्रतिजना ही नमे भक्त्या प्रणश्यति। तो इसलिए कभी कभी ऐसे हैं, चाहे यदि कोई दुराचारी है तो, लेकिन बाह्य रूप से कुछ दिखाई पड़ रहा, लेकिन जो व्यक्ति का शोक किस लिए कर रहा है, सारे कार्य देखना चाहिए किस लिए कर रहा है, हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। यदि इसी कार्य उसके कार्य में भगवान प्रसन्न होते तो फिर उस व्यक्ति दुराचारी नहीं है। तथा कथित लौकिक दृष्टि से लोग कुछ कुछ देखते ऐसा नहीं है। कभी कभी प्रभुपाद ने कहते थे साइंटिस्ट लोग को, यू रास्कल यू नॉनसेंस फिलोसोफर यू डोंट नो एनीथिंग। तो कहीं कहीं क्या है, साधु ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं, कहीं ऐसे साधु ऐसे ही बोलना है, साधु तो बड़ा मीठे बोलना चाहिए, सदा है अच्छे बोलना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी जो ऐसे कहते थे गलती कर रहे थे, नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी जो कहते सच्चे बोलते थे, लेकिन उनकी ऐसे कहने का अधिकार कैसे था, उनकी अंतकरण में करुणा की भावना था प्रत्येक जीवों के प्रति। ये पिता के समान पुत्र को दांडते थे कि क्या कर रहा, नहीं जानते क्या कर रहे हैं लोग। प्रभुपाद बड़े दुखी रहते, उनके लिए बहुत करुणा में उनके हृदय भर जाता था, कैसे इनकी उद्धार होगा, इनको अज्ञान सोचकर, अज्ञानी सोचकर ऐसा ही इनको सुधार के लिए दांडते थे। इनको हिम्मत था प्रभुपाद जी को, वो कलकत्ता में कहीं भी, विवेकानंद का भी कितने बार प्रभुपाद जी उसको दांड देते थे, चिकन रिलीजन चिकन। लेकिन अभी प्रभुपाद जी को यदि कोई इमिटेशन हो करेगा क्या होगा हालत, आप जाएगी कि साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस में खड़ा होकर बोलोगे यू आर ऑल रास्कल्स नॉनसेंस डोंट नो एनीथिंग, धक्का भर के निकाल देंगे वहां से, बेकार के सारा स्कन बदनाम हो जाएगा, क्या है साधु लोग। अब कलकत्ता में कोई खड़ा होकर सेवा में विवेकानंद की निंदा कर दोगे क्या होगा, भगा देंगे वहां से तुरंत, आपको माफी मंगाना पड़ेगा। एक सन्यासी हमारे स्कूल के कहा एक स्टेज में विवेकानंद की थोड़ा समालोचना कर दी, घेर गए लोग, माफी मांगो ही नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, इतना हिम्मत है, विवेकानंद को निंदा कर दिया, माफी मांगो। नहीं प्रभुपाद जी ऐसे करते थे वो, तो हम इमिटेशन नहीं कर सकते किनको, महाभागवत वैष्णव को, तो क्योंकि उनके पास में पूरे विश्वास करुणा की भावना होता है और उनकी उनकी अकल्याण करने की भावना उनके पास नहीं होता, व स्वयं का प्रतिष्ठा व पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं होता, संपूर्ण रूप में भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से मुक्त होते हैं महाभागवत। इसलिए दूसरों की कल्याण करते तो उनके विश्वास रहता कि अवश्य राखी बे कृष्ण, विश्वास पालन, मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ कौन है, कृष्ण है। कोई छोटा बच्चा है अकेले जा रहा है रास्ता में, कोई पहलवान आ गया सामने, क्या करेगा वो, थोड़ा पहलवान आ रहा है आंख से दिखाएगा इसको, बच्चे को थोड़ा जोर बड़ा बड़ा आंख करके देखेगा क्या होगा, वही पेशाब कर देगा, तुम भागे। लेकिन यदि बच्चे के साथ मामले पिताजी है, पिताजी खड़ा है, पिताजी आ रहा है, बेटा छोटा ना उसका साथ में अपने पिताजी भी है, और कोई आके सामने से दिखाएगा आंख दिखाएगा, बच्चा डरेगा, उसको आंख दिखाएगा उल्टी, जानते मेरे पास आएगा तो कौन जाएगा, पिताजी जाएगा उसके पास, प्रहलाद को विश्वास था, हिरण्यकशिपु क्या कर लेगा मेरा, जो भगवान के शरण में हो हिरण्यकशिपु क्या कर लेगा मेरा, विश्वास था किनको, प्रहलाद को, डरते नहीं थे। कितना प्रयास किया हिरण्यकशिपु, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, साधु को भी कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते हैं, जो सत्य है उसको बोलने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, प्रहलाद को कॉम्प्रोमाइज नहीं किए साधु के साथ, नहीं क्या जो हिरण्यकशिपु के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी का नीति भी ऐसा ही है, लेकिन हम उनको इमिटेशन नहीं कर सकते हैं महान संत को, लेकिन हमारा जो जनरल नियम है, हमारा स्थिति देखते हुए हम सदा सदाचार का सद्गुण जैसे व्यवहार करना, वैष्णव एटिकेट को फॉलो करना चाहिए। हम महाभागवत वैष्णव को अनुकरण नहीं कर सकते, उनके मार्ग को अनुसरण कर सकते, उनके जो आदेश है अनुसरण कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कि भक्ति के सारे महिमा जानते हैं, जप भगवान के नाम जपने का महिमा, कीर्तन करने के महिमा, क्योंकि कलि युग में कोई दूसरे उपाय नहीं है। कौन सा है? कलि काले नाम मात्र वैष्णवेर धर्म। वैष्णव का क्या धर्म है इस कलि युग में? भगवान के हरि नाम को आश्रय करना। नाम में ही भगवान के सब कुछ है। नाम में प्रस्फुटित रूप रूप गुण कर्म सब है। इस कलि युग में कोई दूसरे उपाय नहीं है। हरेर नाम इव केवलम। कलौ नास्तेव 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 गत्री अन्यथा। लेकिन कभी कभी एक जोगी था न्यूयॉर्क में, पहला दिन में प्रभुपाद जो वहां करते थे, ब्रह्मानंद प्रभु की कहानी कहते थे वृंदावन में, कि जोगी ने आकर बोलता था प्रभुपाद जी, मैं थोड़ा जोग सिखाऊंगा। किसको? अपने शिष्य लोगों को जोग सिखाऊंगा, क्योंकि जोग करेंगे तो इनके स्वस्थ रहेगा, हेल्थ ठीक रहेगा, फिर अच्छा से आप जप फप कर सकते हैं, मन स्थिर हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा, सत्वगुण में रहोगे, फिर जप करोगे। बार बार समझाता था प्रभुपाद जी, प्रभुपाद कुछ इसके आंसर नहीं करते थे। लेकिन एक दिन मॉर्निंग वॉकिंग में जाते थे प्रभुपाद, जप करते करते शिष्य विचार चलते थे, पाप पीछे पड़ गया। बोला नहीं स्वामी जी, कुछ आंसर नहीं दे रहे, मैं डेली पूछ रहा हूँ आपको। मैंने देखो दूसरी जगह मैं कितना फीस लेके सिखाता हूँ, जो यहाँ फ्री में सिखाऊंगा, फ्री में जो सिखाऊंगा। प्रभुपाद देखा बड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, ब्रह्मानंद प्रभु बोले, ब्रह्मानंद प्रभु आए गए सामने, जोगी के सामने खड़ा करते हैं, जोगी और ब्रह्मानंद खड़े हैं तुमने फेस टू फेस। प्रभुपाद जी यू आर लुकिंग दिस बॉय, ब्रह्मानंद तो अभी जैसे थे और उसमें पूरा यंग थे, यंग लड़के 22-23 साल के एकदम यंग लड़के थे, बल्कि यू लुकिंग दिस बॉय इफ आई टेल दिस बॉय नाउ ही विल इन दैट स्पॉट नाउ यू ग्रैब यू जस्ट किल यू इन द स्पॉट। कैन यू और जोगो सेव यू? जोगी वो देखा भाग गया वहीं से, तो भाग गया और कभी नहीं आया जोगो सिखाने। जोगो सिखाने दोबारा नहीं आया। प्रभुपाद ने कभी जो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया किसमें, जोगो मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, इसमें नहीं। भक्ति स्वतंत्र है, हमारा धर्म क्या है? भक्ति योग धन कृष्ण नाम श्रवण क्रंदन। वृंदावन दास ठाकुर कहते चैतन्य भागवत में, वैष्णव के धर्म क्या है? वैष्णव के धर्म है भक्ति योग धन। भक्ति योग किसको कहते हैं? कृष्ण नाम श्रवण क्रंदन। नयनागद सुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितं वपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। ये वैष्णव का धर्म है। आप सोचे कि नहीं, हम थोड़ा ये नीति उपयोग कर देंगे इधर। कौन सा? जोगों को हमारे साथ मिला देंगे थोड़ा भक्ति के साथ में, बट जोग अच्छा से होगा तो हमारा मने फिर अच्छा से जब करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे थोड़ा, जो हाँ यहाँ से नीति उपयोग कर देंगे। कौन सा? सर्प और मुसी का न्याय है। जोगों को इसीलिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जोगों करके हम थोड़ा हेल्दी रहेंगे और उसके बाद अच्छा से नाम करेंगे। ये प्रभुपाद जी के द्वारा समर्थित नहीं है। नाम के समय में जो जो सुबह बैठकर गुरु की सबसे बड़ा पहला आदेश क्या है? माला पर 16 माला जप कर लेना सबसे पहला निर्देशन है। इसलिए उस निर्देशन को जब आप पहले से फॉलो करते थे और उस फर्द को उस समय में नाम जप को छोड़ के जोग करना है, ये नाम के चरण में अपराध है, पंचम अपराध। नाम की महिमा को काल्पनिक समझना, क्योंकि नाम की महिमा ऐसे ही कहा गया है नाम चिंतामणि में, जो शुद्ध नाम लेता है सब कुछ उसके समाप्त होते हैं। शुद्ध नाम से नहीं, जो नामा आभास केवल नाम आभास नाम लेता है, नामाभासे न रहय सुपंक्ति पावन, नामाभासे सर्व रोग हय निवारण, सकल शंका नामा भाषे दूर हय नामा भाषी सर्वरिष्ट हैते शांति पाय जख्य रख्य भूत प्रेत गृह समदय नामा भाषे सकल नर्थ दूरे जाय। जो आभास नाम के बोल लेता है उसका क्या फल है, नामाचार्य हरिदास ठाकुर व्याख्या करते हैं। गौरांग महाप्रभु श्रोता बन गए और महाप्रभु उन्हीं की कृपा से हैं, स्वयं महाप्रभु ने उन्हीं की मुख से ही बोला रहे थे। किनके मुख से? हरिदास की मुख से हैं। कहते कि नामाभास केवल जो होता है ऐसे ही पवित्र वो सभी नामाभास अवस्था से व्यक्ति संपूर्ण रूप में पवित्र हो जाता है। नामाभास में आभास नाम लेने से ही व्यक्ति समस्त रोग व्याधि से मुक्त हो जाता है। विश्वास है केवल आभास नाम लोगे आपके शरीर में जितनी शरीर रोग व्याधि सब समाप्त हो जाएंगे। उसको विश्वास नहीं हुआ इसी बात, किसको? गोपाल चक्रवर्ती को विश्वास नहीं हुआ। क्या हुआ उसके हालत है? नामाचार्य इसी नाम की महिमा को कहते थे उधर भी गोवर्धन मजुमदार के सभा है। तो इसलिए आभास नाम लेने से व्यक्ति समस्त रोग समस्त रोग व्याधि को निवारण कर सकता है। प्रभुपाद जी का एक शिष्य था अमेरिका में, एक ही व्यक्ति जिसको प्रभुपाद जी बाबा जी दिखा दिया था, फिर वो इसके बाद प्रभुपाद जी बंद कर दिया क्योंकि वो कहा कि कैंसर हो गया। उसको डॉक्टर बोला कि तुमको कैंसर हो गया, और आके प्रभुपाद जी पास रोने लगा मुझे कैंसर हो गया। डॉक्टर बोला 6 महीना में मृत्यु हो जाएगी तुम्हारा, 6 महीना बस फरमाए तुम्हारा। और रोने लगा तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है तुझे मैंने बाबा जी दिखा दे रहा हूँ कि सब समय हरि नाम लेना। बाबा जी का दिखा क्या? डे एंड नाइट चांट हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। जाओ मायापुर में रहना, मायापुर में रह के क्या करना है? दिन रात नाम लेते 3 बार गंगा में स्नान करना और सदा गंगा जल ही पीना, दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ गंगा जल पान करना, गंगा जल पीना, गंगा में 3 बार स्नान करना त्रिसंध्या में, और दिन रात हरे कृष्ण भजन करते रहना, हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहना, और राधा राधा माधव मैं वहाँ व्यवस्था कर दूंगा। एक टाइम तुमको क्या मिलेगा? राधा माधव की महाप्रसाद मिलेगा है, जैसे हरिदास ठाकुर को मिलता था। किसके महाप्रसाद? गौरांग महाप्रभु का। और उसी को खाकर एक टाइम भोजन करते रहो। उस समय तो पूरा विश्वास था क्योंकि अभी कैंसर हो गया मरेगा है। आकर प्रभुपाद जी फॉलो करके नाम करने लगा, 6 महीना बीत गया मरा नहीं। जो पेट में जो यंत्रणा हो रहा था पेट का दर्द उसे आस्ते आस्ते समाप्त हो रहा है। 1 साल बढ़ गया, 1 साल चला गया और तो सुस्त हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया रही और तो स्वस्थ हो गया। बोला प्रभुपाद आज तुम्हारे पेट में कोई दर्द कुछ नहीं है, अभी तो डॉक्टर बोला था 6 महीने में मर जाऊंगा, अभी तो 2 साल हो गया मेरी कुछ नहीं हो रहा। प्रभुपाद कहे दिस इज दी पावर ऑफ होली ने। तो बोला ठीक है प्रभुपाद, थोड़ा सा तो देखा डॉक्टर को चेकअप कर लेता हूँ, जाता हूँ एक बार अमेरिका। तो बोले नो नीड टू गो अमेरिका, यू हैव टेकन दिस भाव टू स्टे इन धाम, दिस क्षेत्र संन्यास, स्टे इन धाम एंड चांट डे एंड नाइट होली ने। माना नहीं, प्रभुपाद चला गया छुपकी भाग गया। भाग के जाके डॉक्टर के पास देखा है, चेकअप किया था, कुछ भी नहीं कहा ना, और कैंसर का नाम निशान भी नहीं है। फिर गया वो दोबारा आया ही नहीं, बस विषय में फंस गया है संसार। फिर क्योंकि लोग ऐसा ही चीटिंग करते, किसको? गुरु है? तो ऐसा नीति नहीं, ये सांप और ये नीति नहीं है। ये कभी कभी साधु के साथ ऐसे उपयोग करोगे, साधु से रोना और साधु कुछ उपाय बता दिया फिर उसको अपने इंद्रिय तत्व में लगाना है, ये ठीक नहीं। तो इसलिए हरिदास ठाकुर कहते कि नामाभासे सर्वरोग है निवारण, केवल आभास नाम लेता है व्यक्ति, इसी से ही सभी प्रकार के रोग व्याधि समाप्त हो जाते हैं। सकल आशंका नामा भाषे दूर है, जितने प्रकार की आशंका है, कई प्रकार की टेंशन हमारे मन में रहता है, ये सब नामाभास भक्ति ठाकुर कहते कुछ नहीं करना जरूरत है। आप सिर्फ शुद्ध नाम लो, नाम बिना आरो किचु तो नहीं, 14 भुवन मझे, 14 ब्रह्मांड में कुछ भी और सत्य नहीं है। सिर्फ नाम लेते रहो नाम प्रभु सारे समाधान कर देते हैं। आपको जो कुछ जानना चाहते हो अंदर से भगवान नाम ही स्वयं बता देंगे आपको। मैं बताओ स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। गुरुकिशोरदास बाबा जी महाराज कुछ नहीं करते थे, सिर्फ नाम भजन करते थे, अंगूठा चपाने वाले थे, लेकिन फिर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कभी कभी विशेष समस्या होता कि जटिल प्रश्न के समाधान मैं स्वयं कर नहीं कर पाता, तो मैं गुरु महाराज के पास जाता, गुरुकिशोरदास बाबा जी महाराज के पास, जो उनके चरण में प्रणाम करता और उनको प्रश्न पूछता। वो सारे प्रश्न की इतनी सुंदर भाव से समाधान कर देते हैं, मैं स्वयं आश्चर्यचकित होता है कहां से आता है इनके पास नॉलेज। सारे वेदों की उपनिषद की श्लोकों उनकी बुक से निश्चित होता है। जस्य देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु तस्य तहि कथित अर्थ प्रकाशन्ते महात्मन। इसलिए नाम कलियुग के जो धर्म है हरिनाम संकीर्तन, भक्ति योग का अर्थ ही क्या कृष्ण भक्ति योग का क्या डेफिनेशन कहा, कृष्ण नाम श्रवण क्रंदन। भक्ति योग धन, ये हमारा धन है। लेकिन भक्ति योग का अर्थ क्या है, वृंदावन दास ठाकुर कहते कि भक्ति योग का अर्थ है कृष्ण नाम श्रवण क्रंदन। कृष्ण नाम को श्रवण कीर्तन करो वैसे की करके ही तुरंत क्या नयनाथ गलत श्रोत भागवत भी कहता है। एक श्लोक कहता ना ठीक से आदमी को श्लोक कह रहा है कि यदि कृष्णाम को श्रवण करके आपकी आंख से अश्रु नहीं बहा तो फिर आपके हृदय किस में बना हुआ है, स्टील फ्रेम रहे हैं। तो इसलिए आपको ये सारा क्यों हो रहा है, नाम की महिमा में विश्वास नहीं है। पांचम अपराध कर रहे कि नाम की महिमा को काल्पनिक समझ रहा, पूर्ण विश्वास नहीं होना किसमें कर रहे हैं। दसम अपराध, नाम की अगाध महिमा गुजारते हुए भी उसमें पूर्ण विश्वास नहीं होना है। कुछ अल्टरनेटिव उपाय देखना, ये सब अपराध है नाम के चरण में। हरिदास ठाकुर कहते कि नामाभासे सर्व रोग है निवारण, सकल आशंका नामाभासे दूर है। नामाभासी सर्वरिष्ट हैते शांति पाए। जितने भी सब ग्रह ग्रह रिष्ट ये सब जो है, शनि जैसा पड़ गया अभी क्या चल रहा है, शनि सत्ता चल रहा है, राहु का दृष्टि पड़ रहा है, ये सब जो ग्रह रिष्ट सब जो हमको चलता है ये भी सब किससे नष्ट होते हैं, है? आभास नाम से ही, ये आभास नाम से ही नामाभासी सर्वरिष्ट हैते शांति पाए। जख्य रख्य भूत प्रेत गृह समय, ये सब उसके भय जो है जख्य रखा है वो भूत प्रेत, कोई ब्लैक मैजिक करता है, काला आदमी जादू, ये सब की जो भय है, नामाभासे सकल अनर्थ दूर है, इससे ही सब अनर्थ नष्ट होते हैं। आभास नाम से ही केवल शुद्ध नाम लेने से प्रेम मिलेगा भगवान चरण में। इसलिए नाम की महिमा को जानते हुए तो हमें फिर दूसरे कुछ अपना नहीं चाहिए। कलयुग में केवल एकमात्र गति है क्या, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवल। ये सब जानते हुए हम यदि नाम की महिमा में पूर्ण विश्वास नहीं करेंगे व महिमा को काल्पनिक समझेंगे, फिर कुछ अल्टरनेटिव उपाय उसके साथ जोड़ देंगे, हैं? फिर जोगो मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, ये नहीं, भक्ति स्वतंत्र है। अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम, उत्तम भक्ति है। हमको फॉलो करना है महाजन जन का तस्य पंथ पूर्ववर्ती, विशेष रूप प्रभुपाद जी ने कभी इसको प्रश्न नहीं दिया योग का, हमारे गोस्वामी लोगों ने कोई योग को प्रैक्टिस नहीं किया, भक्ति विनोद ठाकुर भी नहीं किए हैं, कोई हमारा पेट थोड़ा बड़ा हो जा रहा है कुछ इसके लिए थोड़ा योग कर लें, भक्ति विनोद ठाकुर के देखो कि थोड़ा पेट बाहर है लेकिन इसका मतलब योग करना है। नाम आश्रय करी था कहो सदा, सदा किसके आश्रय में रहो, नाम के आश्रय में। इस कलयुग में यदि नामाश्रय करके जो था रहता है वही कृष्ण के चरण में प्रेम को प्राप्त करता है, किसी अन्य आश्रय से भगवान के चरण में प्रेम मिलने वाला नहीं है, तो हम जो गोल देखते कि हमारा लक्ष्य है भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करना, तो फिर किसके आश्रय करके रहना, नामाश्रय करी था कह सदा। तो सबसे मूल्यवान समय उसको नाम लेने में ही लगाना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, शुद्ध भाव से नाम लेने से ही सब पूरा हमारे सारे समस्या उसी से समाधान हो जाते। किसे, नाम प्रभु सब कुछ समाधान कर देते हैं। तो इसलिए ये सारे आगे आगे बता गया है, नामाभास से सब कुछ प्राप्त होता है। धर्म अर्थ काम मुख्य चतुर्वर्ग दाता सर्वशक्ति धरे नामा भास जीव त्राता जगत आनंद कर श्रेष्ठ पद प्रद अगतिर एक गति सर्वश्रेष्ठ पद वैकुंठादि लोक प्राप्ति नामा भाषे हय विशेषत कलिजुगे सर्वशास्त्र कय। ये रामाचार्य हरिदास ठाकुर के निर्णय है। इसमें यदि हमको विश्वास नहीं तो फिर ये संस्था में क्या, ये कलिजुग का जो धर्म को विश्वास हरिनाम में विश्वास होना चाहिए। आचार्य नाम के आचार्य कौन है? हरिदास आचार्य, आचरण करके सिखाए। इसे उन्होंने बैठ के डेली 3 लाख नाम देते थे और कुछ करते थे दिन रात बैठ के नाम नामाश्रय करी था कह सका। इसलिए इस कलयुग में कोई गति नहीं, नाम के साथ में किसको मिक्स नहीं करना चाहिए। नाम के साथ में क्या दूसरा किसको मिक्स नहीं, योग नहीं कर्म नहीं ज्ञान नहीं सो नहीं, संपूर्ण रूप में शुद्ध नाम, शुद्ध नाम लेने से ही कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त होगा। अन्य जो सो प्रोसेस है केवल शरीर प्रति आसक्ति हमारा बढ़ाता है, शरीर के स्मरण को बढ़ाता है, नहीं तो कृष्ण के स्मरण सदा कृष्ण को स्मरण करने के लिए सदा हरि नाम ही रटना चाहिए। जज्ञानं भगवान क्या कहते हैं, जज्ञानं जप यज्ञ अस्मिन्, भगवान के नाम को जप करना यही विधि सबसे अधिक प्रसन्न करता है किनको, भगवान, इससे बड़ा कोई विधि नहीं, दूसरा कुछ कार्य इंपोर्टेंट नहीं है संसार में है। फिर प्रभुपाद ने कहा था जो रिजोल्यूशन डिजोल्यूशन मीटिंग सब चलते रहेगा लेकिन फिर भी ये नहीं बंद होगा क्या, भगवान के नाम लेना है। यहाँ कमी रख दिया, जब ठीक से 16 माला जपा नहीं, प्रभुपाद निर्देशन सुबह बैठकर ध्यान से जपा नहीं किया और कितना भी कुछ प्लान बनाने से भी वो सक्सेसफुल होने वाला नहीं है, है? तो इसीलिए हमें सर्प मुसिक का जो न्याय है नाम के पास में नहीं लगाना है कि थोड़ा और किसको चले कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, किसका योग को हम इसलिए उपयोग कर लेते हैं, थोड़ा योग कर लेंगे और अच्छा रहेगा हमारे फिर मन प्राणायाम आदि करके सुस्त हो जाए फिर बैठ के नाम लेंगे है? नाम उसके लिए प्रतीक्षा नहीं करता है, है? नाम प्रभु सुख के लिए प्रतीक्षा नहीं करते, नाम प्रभु स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र है। आप यदि शरणागत हो नाम के चरण में फिर आप शुद्ध नाम ले सकते हो, यदि शुद्ध नाम लेने के लिए और किसी के शरण में जाते हो तो वो संभव नहीं है, नाम की शरण में ही रहना, नामाश्रय करी था कह सदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वही बुद्धिमान है, है? हरि नाम कृष्ण नाम बड़ा ही मधुर, जय जन कृष्ण भजे से बड़ा चतुर, वो सबसे इंटेलिजेंट है, है? हरि नाम सदा जप करता है, मधुर मधुर नाम लेता सदा, वो सबसे बड़ा इंटेलिजेंट है। जजंति ही सुमेधसा यज्ञ संकीर्तन प्रायर जदंति ही सुमेधसा, सबसे बुद्धिमान है। तो इसी के माध्यम से कर दिया, आपको विश्वास है नाम की महिमा में, जो वर्णन बहुत सुंदर वर्णन है हरिनाम चिंतावन में कि आभास नाम लेने से सब खत्म हो जाएगा, आपके रोग व्याधि ये सब उससे खत्म हो जाते हैं, है? लेकिन एक कमी हमारे पास है, हम आभास नाम भी नहीं ले पाते, सदा कौन सा स्तर में रहते हैं, अपराधी है? अपराधी निरंतर है? सदा निरंतर अपराधी रहेंगे, इसलिए नाम की थोड़ा कुछ नहीं मिलने वाला है, कम से कम तो आभास स्तर पर आए हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है, समय हो चुका है, कोई किसी प्रश्न है? हाँ
धन्यवाद महाराज, जैसे आपने बताया कि नामाभास से ही सारे जो बीमारी वगैरह है सब ठीक, रोग दूर हो जाता है। तो इस भक्त को अपने स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए कुछ अलग से करना चाहिए कि जैसे
है?
एक भक्त वो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ नाम का ही आश्रय लेना चाहिए या और अन्य कोई विधि नहीं पालन करनी चाहिए?
चरणामृत खाओ बोलते क्या आप खाने पीने का, चरणामृत लेने के टाइम क्या बोल रहे?
अकाल मृत्यु मरना
विश्वास है इसमें है?
माना जैसे अगर
जिसमें आपको विश्वास नहीं होता ऐसे कार्य करे वो कार्य कर नहीं करता, जिसको विश्वास है कार्य करे। गलती शास्त्र में नहीं है, चरणामृत का महिमा जो कहा गया उसमें गलती, गलती हमारे पास है, हमको विश्वास नहीं है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पाद दो कपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते वासिरस्य धारणा है। इसमें विश्वास है तो काम करेगा। हरिदास ठाकुर विश्वास होता तो कोई रोग व्याधि होता था ना क्या? जिसको विश्वास है उसको कुछ नहीं होने वाला। हमारे पास में विश्वास के श्रद्धा सब भक्ति का शुरुआत कैसे होता है? श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसरी।
अगर विश्वास नहीं है तो क्या करना चाहिए?
विश्वास को बढ़ाना है, विश्वास नहीं तो छोड़ देना। जो अच्छे संगति करने के लिए सबके रहस्य क्या है? उन्नत भक्तों की संगति है। जो एडवांस डिवोटी है, जो इसी शास्त्र के सिद्धांत पर जीवन को निभा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की संगति करने से, सेवा करने से श्रद्धा बढ़ेगी है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संघ, कृष्ण प्रेम पूजा है तीनों मुख्य अंग है।
जैसे प्रभुपाद जी भी मसाज लेते थे, मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, ऐसे मतलब वो
तो मैसेज लेते थे प्रभुपाद जी ने, उनकी उम्र कितना था कृपा करने के लिए, आपको कृपा करने के लिए भक्त की चरण स्पर्श करोगे तो आप क्या होगा? शिष्यों से मैसेज लेते, अपने शिष्यों से लेते थे कि बाहर का मैसेजर मैसेज देख करने वाला कोई पहलवान को बुलाकर प्रभुपाद जी मैसेज नहीं लेते थे है? कोई होटल में जाकर मैसेज नहीं लेते थे, शिष्य को कृपा करने के लिए है? और वो लोग आग्रह होकर जाते थे प्रभुपाद जी को सेवा करेंगे, ऐसा नहीं बाध्यवाद करना से किया जाता था।
माँ जैसे वॉक पे भी जाते थे है? जो वॉक पे जाते थे वो भी कृपा,
तो वॉकिंग करना जब ही करते थे, खाली वॉकिंग ही करते थे है? आप ध्यान करते जब करते उस समय जप करते ना क्या भगवान के नाम लेते सदा, खाईते सुईते महाप्रभु कहते सब समय या इतने सर्वसिद्धि हई वे सभा है। महाप्रभु कहेंगे यह है तो सर्वसिद्धि है ही सवाल है, विधि नहीं यार, कोई विधि नहीं सब सब। तो इसमें हमारा श्रद्धा कमने के कारण आस्ते आस्ते नाम के प्रति सब सब समस्या वहीं से शुरू होती है। जिसको श्रद्धा है, श्रद्धावान जन है, कनिष्ठ मध्यम और उत्तम भक्त श्रद्धा के आधार पर माने जाते हैं।
अप्लाई होना चाहिए सिर्फ योग में क्यों? अगर कोई कार्य भी करता है काम करने
सभी काम में, इनमें कई खाली योग, लेकिन योग करते हैं तो किसी भक्त ने मुझे पूछा कि योग करना चाहिए कि नहीं, तो इसलिए मैं बोला ठीक है।
धन्यवाद महाराज। जैसे फिर हम देखते हैं कि वरिष्ठ भक्त भी दवाई लेते हैं,
दवाई ले सकते हैं, लेकिन जैसे कोई बोलता है कि चलो दवाई के कष्ट को उपशम करने के लिए थोड़ा सा आयुर्वेद है तो बताया गया, लेकिन कई बार मुझे कोई बोलता है कि चरणामृत के पहले दवाई लेना पड़ेगा, मैं इसको नहीं उसको स्वीकार नहीं करता है। यदि कोई बोलता है चरणामृत पहले सुबह लेना पड़ेगा, वही होटल का ट्रीटमेंट बार और कोई वैद्य कहते नहीं सुबह सुबह एकदम खाली पेट में सुबह उठ के स्नान कर तुरंत ही वो मेडिसिन खाना पड़ेगा पानी के साथ, हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हम कोई भी मेडिसिन नहीं लेते जो कि चरणामृत का पहले लेना पड़ता है, पर विश्वास हो चरणामृत में सब है। ये साथ साथ कभी हम केवल जड़ी बूटी आदि जो जिसको भगवान को ऑफरिंग करके प्रसाद बना के खा सकते हैं, नहीं तो नहीं दूसरे प्रसाद दूसरे औषधि नहीं। जो मेरा सिद्धांत जो प्रभुपाद जी के सिद्धांत फॉलो करे फाउंडर आचार्य हैं, प्रभुपाद को भी लाइक नहीं करते थे आयुर्वेदिक मेडिसिन के अला दूसरी मेडिसिन नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते नाम हट्टा भक्त प्रति इंस्ट्रक्शन ओनली आयुर्वेदिक मेडिसिन भक्ति विनोद ठाकुर भी कह रहे हैं। इसलिए ये सब ठीक है, लेकिन कहना है प्रिंसिपल आप लोग को कभी स्मरण कराना कि कम से कम जाने हमारा आइडियल कहाँ है, कहाँ रहना चाहिए, अब है कहाँ है।
जैसे महाराज फिर ऐसे ऑपरेशंस में जाने पड़ते हैं डिवोटीज को, अब ऑपरेशंस तो फिर एलोपैथी में है तो उसमें मेडिसिन भी लेनी पड़ती है
कभी 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 कर, लेकिन हमारा सिद्धांत क्या है मैं बताया, शुद्ध भक्त कभी प्रभुपाल ने कहा कि डोंट कट माई बॉडी, शिव कहा कि डोंट कट ही मैं भाग्य आए लंदन से हॉस्पिटल सीधे उठे सब लगा हुआ है भाग्य है सीधे भाग्य है तो जो भी है, लेकिन हमारा क्या सिद्धांत कहाँ पर हमारा होना चाहिए तो इस सिद्धांत केवल बताया बस, ये आचार्य का सिद्धांत है, जिसको इस पर पूर्ण विश्वास है भगवान सहायता करते हैं, जानते कि ऐसे चाहता है तो भगवान सहायता करते हैं, उसको उसको करना नहीं पड़ता।
वैसे हम आपने कह रहे हैं कि नाम के समय हम योग ना करें, अगर फिर 16 माला करने के बाद तो योग
उसमें बाद में आप कभी कर सकते, लेकिन उस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट समय आपको गुरु का आदेश है 16 माला जपना तो सबसे इंपॉर्टेंट समय में इसको करना चाहिए, जिस समय हम पूरा कंसंट्रेशन होकर इसको कर सकते थे, मैं पहले उस समय में करते थे उस समय को उसके लिए ही पूजा करना दूसरा के लिए ये नहीं,
ये बात समझ सकते हैं 16 माला करने के बाद शरीर को स्वस्थ रखने की
हाँ, तो उसके बाद तो कर सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम को जब के लिए पूजा करना है, जब के साथ में किसी की मिश्रित नहीं करना, उसमें सीधे कंसंट्रेशन जब है अन्य मनस्क न हो सिर्फ, फिर हमारे जो मेन प्राइम ड्यूटी है गुरु के प्रति 16 माला जब करना, ये गुरु के सबसे जितने भी आदेश है सभी आदेश से प्राइम इंस्ट्रक्शन है, तो इसको पहले समाप्त करना, इसके बाद दूसरी कुछ।
इसी सिलसिले में जैसे आपने बताया कि नामाभास, इसी सिलसिले में जैसे आपने बताया कि नामाभास का असर ये होता है कि उससे तो अपन नाम ले रहा है इस ये सोच के कि मैं नाम लूंगा तो मुझे कोई रोग नहीं होगा, तो क्या ये नाम से सेवा लेना नहीं है?
नहीं नहीं, ऐसा ही भावना रखी जो करता है वो भी गलत है कि नाम के माध्यम से मैं इसको नष्ट करूंगा, ये सब नहीं
ठीक कर लूंगा
है? वो आभास नाम दो प्रकार के कहते हैं, छाया आभास और प्रतिबिंब आभास, फिर वो नहीं हम तो नाम आभास कर नाम आभास मांगा इसे मुक्ति हो जाए ऐसा भावना करके लेना क्यों नहीं।
एक बार साथ में ये भी सुना है मैंने पढ़ा है आयुर्वेदिक विलास में सनातन गोस्वामी जो है प्राणायाम जो है रिकमेंड करते हैं उन लोगों को जिनको नींद
डेटी अर्चन के लिए, शिविर अर्चना के लिए, नाम जपने के लिए नहीं है। अब डेटी अर्चन विग्रह में जब जाओगे अल्टर में उस समय कहा जाता है व्यक्ति विलास में प्राणायाम आदि करके अंदर में जाना है, लेकिन नाम जपने के टाइम खाईते सुईते किसी भी समय में गोपाल गुरु इसीलिए महाप्रभु के तुम भी मेरा गुरु है।
नाम के अंदर महाराज फिर ये भी है कि सबसे अच्छा कहा जाता है बैठ के जप करना, बैठ के जप करने को सबसे अच्छा जप माना जाता है, चल के जप करने को अच्छा जप माना नहीं जाता, तो फिर कैसे समझो इस चीज को जो लोग मॉर्निंग वॉक करते जप करते हैं डिवोटीज?
डिवोटीज बैठ के जप करना ठीक है, लेकिन जिसको रजगुण में प्राधान्य है रजगुण है तो बैठ नहीं सकता है? तो इसका जप छोड़ देगा ना क्या, तो चल के जप करेगा, बैठने जो सतोगुणी व्यक्ति एक जगह बैठ के जप कर सकता है, लेकिन जो रजगुण प्राधान्य है तो सो जाएगा, तमोगुण नहीं होगा तो सो जाएगा, तो उनको चल के जप करना चाहे है, आर्टिफिशियल कोई सतोगुण स्तर में नहीं आएगा, सो जाएगा बैठेगा तो, नहीं तो खड़ा हो जाएगा कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसलिए किसी भी उपाय से नाम लेना ये धर्म है, कैसे भी जाओ नाम लेते रहो सदा है, इसको जो कई युग धर्म है इसी को हम यदि शुद्ध भाव से नाम लेंगे सब कुछ, तो हम ये अपराध के ऊपर से ही वो नहीं उठ पाते, ये अपराध के स्तर पर सदा रहते हैं, अपराध ही निरंतर सदा रहते तो कैसे ऊपर कैसे उठेंगे। ओके हरे कृष्णा। हाँ क्या लास्ट क्वेश्चन?
मतलब इस हिसाब से तो फिर भक्तों को कोई रोग आना नहीं चाहिए, जो शुद्ध भक्त हैं उनको कोई रोग होना, भक्तिनाथ ठाकुर का पूरा जीवन उनको कुछ ना कुछ रोग आते रहते थे, और
भक्त नहीं आते भक्त शुद्ध भक्त को रोग व्याधि नहीं होता ये नहीं कहा गया,
कोई नामाभास,
लेकिन भक्त जो रोग जैसे पांडव लोग ने क्या हुआ इतना कष्ट सहे भगवान स्वरण में थे भगवान स्वयं उनके साथ जाते थे, भक्त इसको किस रूप में मानता, भक्त इसको नहीं मानता कि मेरे को मैं भक्ति कर रहा हूँ कि रोग व्याधि हो रहा है, वो इसको उल्टे रूप में लेता है, भगवान ने इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे ही मेरे मति को भगवान चरण में अधिक लगेगा, कुंती महाराण कहते मुझे हमको ज्यादा दुख दो जैसे हम ज्यादा स्मरण करेंगे है, तो विपद आएगा भगवान जानबूझकर कभी कभी भक्त कैसे स्थिति में डालते वो ज्यादा स्मरण करेगा भगवान की। हैं, ठीक है। हरे कृष्ण, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।